तमोगुणी आदमी का स्वभाव होता है कि मारू ते मारा छोकराओनु अथवा मारू ते मारा बाप नुन तारा मा मारो भार। मैं किसी को मान न दूं लेकिन मेरे को सब मान दे, तमोगुणी ऐसा चाहता है। रजोगुणी कहता कि आपने मान आपी तो आपने मान आपे, आपने लगन माने बोलाई आमने बोलाई तो एमना छोकराना लगन था ने मोटी पार्टी छे ने आपने जवानू मळे એટલે આપણે ભી એમની હારે બેસવાનું તો મળે ને। वो ऐसा करके मान के तंतु, मान मिलने के लिए वो संबंध के तंतु जोड़ता रहता है और संबंध के तंतु जोड़ते जोड़ते इतना बहिर्मुख हो जाता है कि जिससे संबंध जोड़ना चाहिए उसके लिए उसको फुर्सत ही नहीं मिलती है और आखिर जगत से अपमानित होकर चला जाता है। और हमें याद रहना चाहिए कि कितना भी मान मिलेगा तो इस बॉडी को, शरीर को देखकर लोग मान देंगे और शरीर को कितना भी तुमने मान से सजाया अंत में देखो मृत्यु आकर इसका अपमान कर देगी। डेकलू फाटी जाए मोड़वा शब हो जाने पर कितना अपमान होता है। लोग बांधते रस्सों से, जिसको मान दिलाए उसको तो रस्सों से बांध कर अर्थी पर शमशान यात्रा ले जाना है, ये मन को हम याद दिलाएं और फिर उसके ऊपर लकड़े रखे जाएंगे और आग दी जाएगी जिसके मान के लिए हम परेशान हो रहे। जयराम जी तो कहना पड़ेगा ना, श्री राम वे वही ऐसा बराबर रखना चाहिए। लड़के की शादी अमुक जगह पे होनी चाहिए, लड़की की शादी अमुक जगह पे जानी चाहिए, घर का डेकोरेशन ऐसा होना चाहिए, ऐसा मकान होना चाहिए, इस लत्ते में होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। हम कितना कितना करते हैं, क्यों? मोभो मान। उससे आधा अगर परमात्मा पाने के लिए कोशिश की जाए तो महाराज ये ब्रह्म विद्या ऐसी है कि ठिंगने शरीर में, टेढ़ी टांगों में और काले चेहरे में अगर ब्रह्म विद्या आती है तो महाराज बड़े बड़े विशाल बाहु, विशाल काय, विशाल राज्य के मालिक जनक जैसे भी उनके चरणों में नतमस्तक हो जाते हैं और साधु संत भी उनके गीत गाते रहते हैं। ये ब्रह्म विद्या ऐसी है, अध्यात्म विद्या। अष्टावक्र मुनि शरीर में 8 वाक थे, काली काया, टेढ़ा मेढ़ा शरीर, ठिंगना शरीर, 12 वर्ष की उम्र, लेकिन ब्रह्म विद्या है तो सुशोभनीय है। मजे की बात है कि लोग अपना ड्राइंग रूम गंदा रखना नहीं चाहते, अपना बाथरूम गंदा रखना नहीं चाहते, रसोड़ा गंदा रखना नहीं चाहते, लेकिन इन इच्छाओं वासनाओं से अंतःकरण गंदा हो रहा है उसका ख्याल भी नहीं करते। कितने समझदार लोग। ओम 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 ओम। तो तीसरा शिष्य का, साधक का, जिज्ञासु का तीसरा सद्गुण है, पहला सद्गुण है मान से दूर भागना, दूसरा सद्गुण है मत्सर से, ईर्ष्या से दूर भागना, तीसरा है अपने कार्य में दक्ष रहे, हां हां सबकी करना लेकिन गली अपनी नहीं भूलना चाहिए। जैसे लोभी ग्राहक से हां हां करेगा, साहब से हां करेगा, हूं हूं करेगा, लेकिन कुछ भी पैसे की बचत होती है कि नहीं? घुमा फिर आके उसका होता है कि मनी मैक्स मेयर गो दाम बनाए काम। तो जैसे लोभी कैसा भी माल वैरायटी खरीदेगा, किसी भी ढंग से बेचेगा, लेकिन उसका लक्ष्य है मुनाफा, रुपया। ऐसे ही साधक का लक्ष्य होना चाहिए कि अचलता, परिस्थितियों के वावे जोड़े हमारे चित्त को चलित न कर दे, इसलिए वो दक्ष रहे। सुख भी आ जाए तो दक्ष रहे, दुख भी आ जाए तो दक्ष रहे। एक लॉजिकल सिद्धांत है, वैदिक सिद्धांत है कि आप जितने अंश में अपने अंतर्यामी के करीब होते हो जाने अनजाने, उतना जगत की चीजें तुम्हारे तरफ खींचकर आती है। और जो आपने जगत की चीजों का, जगत के संबंधों का अवलंबन लिया और अपने आप से दूर चले गए, उतनी जगत की चीजें आपका त्याग कर देती है। जैसे लोहा का टुकड़ा लोहे चुंबक से चिपका है तो छोटे छोटे लोहे के कण उसको चिपक जाएंगे, वे तब तक चिपके रहेंगे जब तक वो लोहे का टुकड़ा लोहे चुंबक से लगा है। लोहे चुंबक का त्याग करते ही लोहे के कण उसका त्याग कर देते हैं। ऐसे ही हम लोग उन चीजों के अधीन होते हैं तो वे चीजें दूर भागते और हम उनके गुलाम हो जाते हैं। और हम अपने करीब आने लगते हैं निस्वार्थ भाव से कर्म करते हैं तो जगत की चीजें अपने आप मान आदि आकर्षित होकर आते हैं। तो संसारी आदमी सत्कर्म करे, मान की इच्छा न रखे, तभी भी उसका मान रह जाता है, यश रहता है। यश की इच्छा से जो लोग काम करते हैं उनका यश नहीं टिकता, मान की इच्छा से जो लोग काम करते हैं उनको इतना मान नहीं मिलता, लेकिन मान और यश की इच्छा बिना करने योग्य सत्कर्म करते हैं और मान और यश ईश्वर के चरणों में अर्पित कर देते हैं तो ईश्वर उनका मान और यश बढ़ाने में जरा कमी नहीं रखते, कोर कसर नहीं रखते। सुन लो शबरी के पैगाम को, सुन लो मीरा के जीवन को, रोहिदास चमार के जीवन को। और जो अपने कार्य में, अपना कार्य क्या है कि प्रकृति के गुण दोष से बचकर अपने आत्मा में जगना, ये अपना काम है। आत्मा किसी गुण से, किसी कर्म से, किसी अवस्था से दोषित नहीं होता है, लेकिन प्रकृति के कार्यों में अहंता रखने से जीव का विवेक क्षीण हो जाता है, इसलिए वो अपने आत्म स्वभाव का अनुभव नहीं कर सकता है। और आत्म स्वभाव का अनुभव न करने के कारण ये जीव संसार के क्षणिक सुखों से आकर्षित होकर जन्म मरण के चक्र में पिसा जा रहा है। उसको निज का सुख बिचारे को नहीं मिला, उस लिए इच्छा वासनाओं के सुख के पीछे इसने करोड़ों जन्म बिता दिए। है तो इतना सुख स्वरूप, इतना शांत स्वरूप, इतना आनंद स्वरूप है कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, लेकिन उसको अपना स्वभाव का पता नहीं चला तो प्रकृति के गुणों में अहंता ममता करने से ये जीव दुख का भागी हो गया। तो अपने कार्य में दक्ष, जो सत्संग आदि सुनकर, गुरुओं के वचन सुनकर अगर दक्ष रहता है तो दुख आया उसको देखा, सुख आया उसको देखा, मान आया उसको देखा, अपमान आया उसको देखा, तो अब आने जाने वाले चीजों को देखा अथवा मन में जो विचार आया उसको देखा, तो मन के विचारों को देखने से, प्राणों की रिधम को देखने से, शरीर की तंदुरुस्ती या बीमारी को देखने से, तो जो अपने तन को, मन को, प्राणों को देखने की कला सीख गया, उस कला में जो दक्ष हो गया, वो दूसरे के शरीर को समझ जाएगा, दूसरे के प्राणों को समझ जाएगा, दूसरे के मन को समझ जाएगा, अंतर्यामी हो जाएगा। तो अपने कार्य में दक्ष, वर्क वैल्यू वर्क, प्ले वैल्यू प्ले, दैट इज द वे टू बी हैप्पी एंड गे। लेकिन वो वर्क वैल्यू वर्क तो जिसकी जो नौकरी है, जिसका जो धंधा है, जो जिसका काम है, उसमें दक्षता ये व्यावहारिक लोगों का है। आध्यात्मिक जगत का दक्षता यह है कि कुछ भी करो लेकिन अपने आत्मज्ञान के तरफ आगे बढ़ रहे या पीछे जा रहे, कर्मों को इतना न बढ़ाओ कि आत्मचिंतन का समय ही न मिले, संबंधों को इतना न बढ़ाओ कि जिससे संबंध जोड़े जाते हैं उसका ही पता न चले। हम लोगों ने संबंध इतने बढ़ा दिए है कि जिससे संबंध जोड़े जाते हैं उससे तो हमने अन्याय कर दिया, तो बाहर के संबंध फिर महाराज मुंह में सिटी बजाते। बाहर के संबंध अगर जिससे संबंध जोड़े जाते उसके लिए समय नहीं निकाला तो बाहर के संबंध ठोकर मारे बिना नहीं रहेंगे। एकनाथ जी महाराज कहते हैं कि रात्रि के पहले पहर और आखिरी पहर आत्मचिंतन के लिए समय निकालना चाहिए। कार्य के प्रारंभ में और कार्य के अंत में आत्मविचार करना चाहिए, वो आदमी दक्ष है। इच्छा उठे उसके पहले प्रश्नवाचक रखे और इच्छा पूरी हो जाए उसके बाद प्रश्नवाचक रखे, वो आदमी दक्ष है। तो इच्छा जो हुई प्रश्न करे कि इस इच्छा से आखिर क्या, तो इच्छा की गुलामी नहीं होगी, इच्छा में पकड़ नहीं होगी, इच्छित पदार्थ अपने आप हाजिर हो जाएगा। ये एकदम टेक्निक बता रहा हूं सिद्धियों की, चमत्कार की, अनायास सफल होने की। जब तक आप इच्छा के गुलाम हैं तब तक इच्छित पदार्थ नहीं आता। आप यश की इच्छा रखोगे तो यश नहीं होगा, मान की इच्छा रखोगे तो मान नहीं मिलेगा, मान की इच्छा को अंदर से सचमुच में निकालने से मान होने लगेगा, यश की इच्छा हटने से यश होने लगेगा। धन की इच्छा हटने से ही धन अपने आप आपका पीछा करेगा। ऐसे सैकड़ों लोगों को मैं जानता हूं, जिस समय उनको धन की तीव्र इच्छा थी उस समय उनको रोजी रोटी कमाना परिश्रम लगता था, जब आध्यात्मिक रास्ते गए और धन की इच्छा ने करवट ले ली भगवत इच्छा में, तो धन उनके पीछे आदू खा के पड़ा। ऐसे कई लोगों को मैं जानता हूं, ऐसे लोग हों वो हाथ ऊपर करे जाहिर में, लेकिन इनकम टैक्स का जमाना है, रुके रहो। जय श्री राम। तो मान की इच्छा छोड़ते, और उसका मतलब ये नहीं कि चलो हम मान की इच्छा नहीं करते तो देखे कौन मान देता है, तो मान की इच्छा है, भीतर से सचमुच में मान की इच्छा हटने से मान मिलेगा, सुख की इच्छा हटने से परम सुख के द्वार खुल जाएंगे। तो अपने कार्य में दक्ष होना चाहिए, तीसरा सद्गुण है साधक का। चौथा है ममता रहित होना। ममता जो है देह में अहंता होती है और देह के संबंधियों में ममता होती है। हकीकत में देह सदा नहीं रहेगा तो देह के संबंध सदा कैसे रहेंगे, लेकिन जो देह को सदा रखना चाहता है या देह के संबंधों को संभालना चाहता है उसको संबंधों के तरफ से दुख उठाना पड़ता है, संबंधों के तरफ से अपमान होता है, और जो जितना संबंधों के पीछे ममता रखता है उतने ही उसके कुटुंबी, उसके पुत्र, उसके परिवार वाले उसको दुख के दिन लाके दिखा देते हैं। और ममता नहीं होगी तो महाराज संबंधों से उतना दुख नहीं होगा जितना ममता वाले को होता है। तो ममता बढ़े नहीं, इस बात में भी उसकी कुशलता होनी चाहिए, दक्षता होना चाहिए। चौथा सद्गुण है कि गुरु में दृढ़ प्रीति वाला होना चाहिए। तो जैसे हम अपने प्राणों को प्यार करते हैं, अपने देह को प्यार करते हैं, अपनी मैं को प्यार करते हैं, ऐसे ही गुरु की मैं को अगर प्यार करने लगे तो अपनी मैं गुरु के रूप में बदल जाती। गुरु में दृढ़ प्रीति वाला। भगवान शंकर ने पार्वती जी को सुनाते कहा, करोड़ों जन्म के यज्ञ तप व्रत ये सब गुरु के संतोष मात्र से फलित हो जाते हैं। जो ब्रह्मवेता गुरु हैं, जो आत्मरामी महापुरुष हैं, उनको कैसे संतुष्ट किया जाए, उनको कैसे प्रसन्न किया जाए और उनमें दृढ़ प्रीति वाला हो। उन महापुरुषों में अगर दृढ़ प्रीति होती है तो संसार के विकारों की प्रीति घट जाती है। ब्रह्मवेताओं में प्रेम हो जाए या भगवान में प्रेम हो जाए तो संसार के तमाम तमाम परिश्रम वायात विकारों में जाने वाली जो शक्ति समय है वो बच जाती है। दूसरी एक बात हम समझ लें कि जो प्रेम को समझे बिना संसार से प्रेम करते हैं वे दुखी होते हैं, और जो प्रेम को समझे बिना संसार का त्याग करते वे भी दुखी होते। फिर से कह दूं, जो प्रेम रस को समझे बिना संसार में प्रेम खोजते हैं वे दुखी हो जाते हैं। जो प्रेम रस को समझे बिना संसार में सुखी होना चाहते हैं या प्रेमी होना, संसार के प्रेमी हो जाते हैं, वे अंत में हताश निराश पश्चाताप की खाई में गिर पड़ते हैं। और जो ठीक प्रेम को समझे बिना संसार का त्याग कर लेते हैं उनको भी अंत में धोखा मिलता है। कबीर जी ने कहा, प्रेम न खेतों उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा चहो प्रजा चहो शीश दिए ले जाए। अपना अहंता जितनी जितनी मिटती जाएगी उतना उतना स्वभाव में प्रेम बढ़ता जाएगा। जितनी जितनी अहंता होती है उतना प्रेम का हिस्सा दूर चला जाता है। बच्चा निर्दोष है, अहंता नहीं है तो प्यारा लगता है। उसकी जरा सी मुस्कान, तोतड़ी भाषा, अशुद्ध भाषा, ग्रामर का कोई ठिकाना नहीं, पानी को आई बोलता है, रोटी को मम बोलता है, पिताजी को बब्बा बोलता है, मम्मी बोलता है, डीडी डी भी ठीक से नहीं बोल सकता है। महाराज एक लड़के से पूछा कि तुम पप्पा मम्मी डैडी में क्या पसंद करते हो, बच्ची ने कहा हम डैडी पसंद करते हैं। पिताजी क्यों नहीं बोलते हो, माताजी क्यों नहीं बोलते हो, बोले माताजी पिताजी बोलने से हमारा जो पफ पाउडर लिपस्टिक होठों की लाली है ना वो खराब हो जाती है। डेडी बोलने से लाली खराब नहीं होती। बिरला और टाटा वाले कहीं कोई महफिल थी बैठे, तो बिरला वाले, मैंने सुनी है ये घटना, फिर विनोदी होगा टुचका जो भी हो, बिरला वाले ने कहा कि देखो मैंने लाखों रुपए धर्मादा का दशमांश धर्मादा करता हूँ, लेकिन वो धर्मादा तो करता हूँ लेकिन अपनी फर्मों का अपना अपना कुल का नाम आबाद करने में लगाता हूँ। मंदिर तो लक्ष्मी नारायण का है लेकिन लोगों को मैंने उल्लू बना दिया, कहाँ जाते हो कि बोले बिरला के मंदिर में, नाम रख दिया बिरला का मंदिर। मंदिर में तो होते लक्ष्मी नारायण लेकिन नाम रखते हैं बिरला मंदिर, बिरला मंदिर, बिरला बिरला बिरला, तो सब धार्मिक आदमी बिरला बिरला बिरला, कहाँ जा रहे कि बिरला के मंदिर में, बिरला के मंदिर, बिरला के मंदिर, हजारों लाखों धार्मिक आदमियों को उल्लू बनाया। जय जय कौन मंदिर क्या जाओ जो क्या मंदिर में, बिरला ना मंदिर में जाए, मंदिर हो लक्ष्मी नारायण नु, हो सत्यनारायण भगवान नु, हो काशी विश्वनाथ नु, काशी मचे क्या जाओ छो बिरला मंदिर। तब टाटा कंपनी के मालिक ने कहा कि अरे तुमने क्या लोगों को उल्लू बनाया, तुमने तो लाखों रुपए खर्च किए और ट्रस्टें बनाई, मैनेजमेंट किया, मैनेजर रखे और फिर बिरला बिरला चला। मैंने तो कंपनी का नाम ही ऐसा रखा कि बच्चा पैदा हो तो हमारी कंपनी का नाम लेता हुआ आए, टाटा 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 टाटा। लेकिन साधक ये बातें सुन ले, थोड़ा हंस भी ले, लेकिन दक्ष रहे कि आखिर ये मनोरंजन है, ये दक्षता है। जय राम जी। मन की विश्रांति कुछ और चीज है महाराज। चौथा सद्गुण है ममता रहित होना और पांचवा सद्गुण है गुरु में दृढ़ प्रीति वाला होना। ईश्वर में जितनी प्रीति है, ईश्वर में प्रीति करने से आदमी के मन के मैल दूर होते हैं, अंतःकरण शुद्ध होता है। और गुरु में प्रीति करने से, विचार सागर का सिद्धांत बताता हूं, गुरु में प्रीति करने से मन का मैल तो दूर होता है लेकिन गुरु तो सामने होते हैं तो उनका उपदेश भी जल्दी असर करता तो अज्ञान भी दूर होता है। यही बात भागवतकार ने 11वें स्कंद के 84 अध्याय के 12वें और 13वें श्लोक में कही। वसुदेव जी ने जब यज्ञ किया तो साधु ब्राह्मण यज्ञ में प्रविष्ट हो रहे थे, भगवान कृष्ण ने उनके चरण प्रक्षालन का काम किया। चरण प्रक्षालन करते करते एक ऐसे त्रिकाल ज्ञानी संत आए जिन्होंने कहा कि कन्हैया ये सब अंगड़ाइयां तू छोड़, नहीं तो मैं तुम्हारा रहस्य खोल दूंगा। श्री कृष्ण बोलते पग मने धोवा दो, तुम पैर धो के क्या लोगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि निष्कपट 50 वर्ष की निष्कपट भक्ति से अंतःकरण का अज्ञान दूर नहीं होता है। पाप तो दूर होते हैं लेकिन ईश्वर और अपने बीच की दूरी दूर नहीं होती। निष्कपट भक्ति, 50 वर्ष की निष्कपट भक्ति से हृदय का अज्ञान दूर नहीं होता लेकिन तुम्हारे जैसे ब्रह्मवेताओं की एक मुहूर्त की सेवा से हृदय का अज्ञान दूर हो सकता है, इसलिए आप मुझे चरण धोने दो। हार्ड मास के देह को जो मैं मानता है और देह से पसार होने वाले पुत्रों को, पुत्रियों को, परिवार को मेरा मानता है, जलाशयों में तीर्थ बुद्धि करता है, धातुओं की बनी हुई मूर्ति में भगवत बुद्धि करता है, लेकिन जिनके दिल में भगवान प्रकट हुए ऐसे महापुरुषों का जो संग नहीं करता वो साक्षात गधा है। मैंने कल ये बात सुनाई थी कि एक बार पांडव जंगल में ऐसी जगह में उलझ गए कि बड़े प्यास ने उनको घेर लिया, भूख प्यास से थके थे, चलना बड़ा मुश्किल सा हो रहा था। सबसे छोटा भाई को भेजा कि तू जा जरा देख कहीं पानी हो तो तू पिए आ, खबर ले आ। सहदेव गया, एक तालाब दिखाई पड़ा और ज्यों पानी लेने को खुबा भर के पीने को गया त्यों वहां से गेबी आवाज आया के सहदेव सावधान, मैं इस तालाब का अधिष्ठाता हूं। यक्ष ने कहा इस तालाब का पानी पीने के पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दे, अगर उत्तर देगा तो पानी पी सकेगा, और यहां धन है वो भी तुझे दे दूंगा। अगर उत्तर दिए बिना पानी पिया तो तुम मर जाओगे। प्यास ने इतना जोर पकड़ा था कि यक्ष की सुनी अनसुनी कर दी, और जो पानी होठों पर रखा महाराज सहदेव चल बस वहीं लेट गए। नकुल आए उनका भी ये हाल हुआ। भीम आए, भीम और भीम भी महाराज लेट गए शवासन में। पानी पीते ही भीम ने भी सुना, बस ये प्रक्रिया चारों भाई। आखिर युधिष्ठिर महाराज ने देखा कि जो जाता है वापस नहीं लौटता, क्या बात है। उसी दिशा में गए, देखा तो चारों एक तालाब है। प्यास लगी, तालाब के तरफ जाते जाते देखा कि भाई पड़े हैं। अब भाइयों को बाद में आकर जगाता हूं, प्यास ने प्राण प्यारे होते हैं, भाई से भी अपने प्राण ज्यादा प्यारे होते हैं। भाइयों को बाद में आकर देखता हूं, जरा पानी का चूल्हा तो पी लूं। यक्ष का आवाज आया कि युधिष्ठिर सावधान, तुम्हारे चार भाइयों की जो मैंने हालत की वो ही तुम्हारी करूंगा। अगर मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया तो मेरी शर्त है कि इस तालाब का पानी तुम तभी पी सकते हो जब मेरे प्रश्न का उत्तर दोगे। अन्यथा आपने अवहेलना कर ली तो जैसे आपके चार भाइयों ने अवहेलना की और उनको मैंने कर दिया जमीन दोस्त, ऐसे आपकी स्थिति होगी। इसलिए कृपा करके आप मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए ताकि मेरी सदगति हो और आपको भी तालाब का पानी धन में अर्पण कर दूंगा। युधिष्ठिर ने कहा, क्या तेरा प्रश्न है? यक्ष ने कहा, सदा प्रसन्न कौन रहता है? जानने योग्य पाने योग्य तत्व क्या है? जिसको जानने से कुछ जानना बाकी नहीं बचता, जिसको पाने के बाद और कुछ पाना बाकी नहीं रहता, जिसमें स्थिर होने के बाद बड़े भारी दुख से भी आदमी चलित नहीं होता, और जिसको पाए बिना जीव अनाथ हो जाता है, और जिसको पाने के बाद जीव का कभी कुछ बिगड़ता नहीं, और जिसको न पाने के बाद कभी कुछ सुधरता नहीं, उस तत्व को, जिस तत्व को न पाने से उसका कुछ भला नहीं हुआ और उस तत्व को पाने के बाद उसका कभी कुछ बिगड़ता नहीं, ऐसा कौन सा तत्व है? जयराम जी बोलना पड़ेगा ना ये बात। ओम ओम कृष्ण कन्हैया लाल की, रण छोड़ो राय की। और तीसरा प्रश्न है कि इस जगत में आश्चर्य क्या है? सबसे बड़ा आश्चर्य युधिष्ठिर ने कहा, जो दो दिन में चार दिन में सब्जी रोटी खा सकता लेकिन देना नहीं करता हो, कर्ज अपने ऊपर नहीं चढ़ाता हो, जो किसी भी कर्ज से नहीं दबा है वो सदा प्रसन्न रहता है। कर्ज दो प्रकार का होता है, एक व्यवहारिक कर्ज होता है, दूसरा धार्मिक कर्ज होता है। व्यवहारिक कर्ज रुपयों पैसों का है, और जिसके ऊपर कर्ज का ब्याज का घोड़ा दौड़ रहा है वो सुखी कैसे? दो टके बे टके बीस यूं आने पर अपनी सत्यानाश कर दिया। अपने तो 40 रुपया भरवाना रेडियो, 40 रुपया में रेडियो पची तो अपताज भरवाना। अरे पण तण घना पैसा जाए तो उपलो माल वापर, जरा तो दक्ष था लिया कि अपने टीवी में फक्त 300 भरी टीवी मिली जाए, लो 1000 रुपया आप टीवी मिली जाए पची तो के हफ्ता 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 अढ़ी घना पैसा जाए ये तो विचार कर। व्यवहार में दक्ष नहीं, भोग की सामग्री उधार लेकर भोगों की सामग्री लाना घर में, ये कितना उपले माल का अपमान। हफ्तों से विलास की वस्तुएं, भोग की वस्तुएं घर में ले आना, ये कितनी बेवकूफी। खैर आप लोग तो ऐसे नहीं होंगे। श्री राम। ओम। टीवी के हफ्ते थी, पंखो हफ्ते थी, रेडियो हफ्ते थी लाए, कहीं नहीं थोड़ा पैसा आप पी थोड़ा थोड़ा करना बदा निकली जाए, बदा निकली जाए पर उपलो मारे निकली गयो हम जो। तो जिसके माथे कोई देवा नहीं है वो प्रसन्न रहता है। देव करीने जमणवार करे, देव करीने लगन में भपको करे, समझी लेव के दक्ष नथी। वो सेल्फ हिप्नोटाइज हो गया और लोगों के द्वारा भी हिप्नोटिज्म हो गया उस पर। अरे लड़के की शादी, अरे तुम्हारे बच्चा हुआ क्या? अरे भाई बच्चा हुआ तो क्या करे, महंगाई का जमाना है, दाम धूम नहीं करते। लड़के की शादी है कि बस ऐसे ही कर लिया, लड़के की शादी है आपने नवो चीलो पाड़े, ऐसा करके काम कर लेना चाहिए, ज्यादा कर्जा करके अपने को मुसीबत में नहीं डालना चाहिए। रूखी भली सुखी भली सारी से संताप, जो चाहेगा चौपड़ी तो बहुत करेगा पाप। ऐसे लोगों को जानता हूं कि जो गहने गांठे ब्याज पर रख देते हैं, 2%, 2.5%, 3%, और महाराज शादी विवाह जरा भपके से करते, ये मान की इच्छा है उसी लिए ना। और फिर क्या मिलता है, ब्याज के नोटिस आते अपमान होता है, और रात को नींद नहीं आती, भैना ब्याज चढ़ो टपड़ वपड़ ब्याज सब ब्याज में पूरा थी, क्या हाल है, मर जाऊं तो अच्छा। अरे मरने में कोई सार नहीं, जीने का अक्ल उपयोग करता, जरा दक्ष हो जाता, कथा सुनता, संतों के पास जाता, जीने की कला सीखता। मरने के लिए थोड़े जन्म हुआ है, जन्म हुआ है साक्षात्कार के लिए, जन्म हुआ है अपने घर में आने के लिए, हजारों लाखों जन्मों के अंत को करने के लिए मनुष्य जन्म हुआ है, चिंता के कोलू में पीसने के लिए थोड़े मनुष्य जन्म हुआ है। लेकिन हम लोगों को जीने का ढंग नहीं है, तो ए महाराज दो रोटियों के लिए न जाने क्या 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 क्या, क्या दो रोटियों के लिए नहीं करते, मान के लिए करते हैं, दिखावे के लिए करते हैं, और ऐसा ऐसा करते हैं कि महाराज छूटना मुश्किल हो जाता है। ईश्वर का चिंतन तो दूर हो गया, बस रुपयों का ही चिंतन, वही माई बाप वही खुदा हो जाता है, सुबह शाम वही खुदा, अपना डॉलर रुपया खुदा हो गया। ओम 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 ओम, जीने का ढंग नहीं, दक्षता नहीं, व्यवहार में कुशलता नहीं। तो पहला प्रश्न था यक्ष का कि सदा प्रसन्न कौन रहता है, कि जिस पर कोई कर्ज नहीं है, कोई देवा नहीं। आप लोग तो देवा करके कोई फर्नीचर नहीं बसाते होंगे, लेकिन कोई बसाता हो ना तो उसको ये यक्ष की कथा सुना देना आप लोग। जय जय। दो प्रकार के देवा होता है, एक तो ये रुपए पैसों का देवा होता है हफ्तों आदि का, दूसरा देवा होता है देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण और शास्त्र ऋण। माता पिता ने हमें पाला पोषा बड़ा किया, तो हमारा कर्तव्य है कि बुढ़ापे में उनकी हम सेवा करें, नहीं कि शादी करके चले जाए, नहीं तो उनका कर्जा रहेगा। माता पिता ने हमें उछेरा है, बड़ा किया है, तो हम भी उनकी सेवा करके बदला चुकाने की कोशिश करें। ये पितृ ऋण हो गया। देव ऋण, वो देव बरसात आदि होता है तो उस देव को भी प्रणाम आदि किया, होम हवन करके, यजन पूजन करके उनके ऋण से उत्तीर्ण। ऋषि ऋण, ऋषि महापुरुषों ने अपने खून का पानी बनाकर भी हमारे लिए नए नए अनुभव खोजे, आविष्कार किए, और हमको जीव में से जगाकर अपने शिव पद में ले जाने के लिए जिन्होंने कोशिश की, ऐसे ऋषियों की स्मृति करके अपने हृदय में ऋषियों के लिए मान और प्रेम भर के अपने हृदय को पवित्र करें, और ऋषियों के आदेश के अनुसार अपने जीवन को ढालें, तो समझो ऋषियों का ऋण हमने चुका दिया और प्रसन्नता आ जाएगी। और चौथा होता है शास्त्र ऋण। अगर शास्त्र न होता तो मानवी खाया पिया कमाया और सो गया, फर्नीचर बढ़ाया वो बढ़ाया, आखिर में पशु जैसा जीवन जी के चला गया। लेकिन शास्त्र त्याग, तपस्या, सेवा, उदारता, नम्रता, ये सद्गुण देते हैं। तो जिन शास्त्रों से हमें सद्गुण मिले हैं, जिन शास्त्रों से हमें आत्मविद्या मिली है, वे शास्त्र और उन शास्त्रों का ज्ञान हमको जिनके द्वारा मिला है, जिन ऋषियों के द्वारा मिला है, जिन शास्त्रों के द्वारा ज्ञान मिला है, वो उनका हम पर कर्जा है। वो कर्जा जब हम दूसरों तक पहुंचाएं तो उस कर्जे से हम मुक्त हो जाते हैं, इसलिए हमारी प्रसन्नता होती है। और ये हम लोगों का अनुभव होता है, जब हम ऋषियों का और शास्त्रों का प्रचार प्रसार करने का सुअवसर पाते हैं, तब हमारे चित्त में विशेष प्रसन्नता होती है, आनंद होता है। तो युधिष्ठिर महाराज का वचन शतांश सत्य है कि जिस पर कोई ऋण नहीं है, जिस पर कोई कर्जा नहीं है, वो सदा प्रसन्न रहता है। जब देखो प्रसन्नता नहीं है तो याद करना चाहिए कि कोई न कोई कर्जा है, कोई न कोई कर्जा है, उसलिए प्रसन्नता नहीं। नहीं तो प्रसन्नता तुम्हारा स्वभाव है, श्वेतपना ये कपड़े का स्वभाव है, और कपड़ा मेला लगा है नहीं तो कुछ न कुछ गंदगी इसको चौट गई है, गंदगी चौट गई तो छप छपा तो धो लो। जब प्रसन्नता से आप अपने को खाली पाए तो देख लेना कि कोई ना कोई कर्जा है। शास्त्र का कर्जा है तो थोड़ा शास्त्र पढ़ लो, ऋषियों का कर्जा है तो थोड़ा ऋषियों के अनुभव को अपने हृदय में ले आओ, ऋषियों को प्रसन्न करने का कुछ आयोजन कर लो। माता पिता का कर्जा है तो मातृ पितृ सेवा करके अपने से अपने को पवित्र कर लो, तो आदमी प्रसन्न रहता है। और प्रसन्न आदमी की बुद्धि ठीक निर्णय करती है। सदैव प्रसन्न रहना ईश्वर की सर्वोपरि भक्ति है। जो प्रसन्न नहीं रह सकता है वो ईश्वर की क्या भक्ति करता है? वो अपने को जो खुश नहीं कर सकता है वो ईश्वर को क्या खुश करेगा? सदैव प्रसन्न रहना ईश्वर की सर्वोपरि भक्ति है, और सदैव निर्भय रहना ये अपनी भक्ति है। जय राम जी की। महाराज, दूसरा प्रश्न है यक्ष का कि पाने योग्य पद क्या है? जिसको पाने के बाद कुछ पाना बचता नहीं, जिसको जानने के बाद कुछ जानना बचता नहीं, और जिसमें स्थिर होने के बाद बड़े भारी दुख से भी आदमी चलायमान नहीं होता है, ऐसा कौन सा तत्व है? युधिष्ठिर महाराज ने कहा, जो सदा प्राप्त है, अप्राप्त की भ्रांति मिटने से जो पाया जाता है, वो अपना आपा, अपना मैं शुद्ध रूप से जिसने जान लिया, जिसने आत्मज्ञान पा लिया, उसने सब कुछ पा लिया। और जो आत्मदेव में स्थित हो गया वो बड़े भारी दुख से भी चलायमान नहीं होता है। तो पाने योग्य पद है आत्मपद। यक्ष के पाप दूर हुए क्योंकि आत्मज्ञान की चर्चा सुनी पवित्र युधिष्ठिर के मुखारविंद से। तीसरा प्रश्न था कि आश्चर्य क्या है? युधिष्ठिर ने कहा, अहर्ण्यानि भूतानि गच्छन्ति यम मंदिरम। अहर्निश भूत प्राणी मनुष्य यम मंदिर जा रहे हैं, सब भागे जा रहे हैं मौत के तरफ, लेकिन दूसरे यहीं अपना किला गाड़ना चाहते, यही मजबूती पायो के 4 फुट नो करो, के मैं तो 4.5 फुट नो पायो कर, तू 14.5 फुट नो करने, 4,000 फुट नो पायो करने, पण क्या लगी रही सही है तू, ये तो विचार ले भाई। अहर्निश मनुष्य मृत्यु के द्वार पर जा रहे हैं। इस समय 2:25 हुए हैं दोपहर के, भर बपोरे आपू जा मैच, जय जय, क्योंकि आसोद सुद 2 दिवस संबत 20-21 मध्यान 2:30 अपने प्रारब्ध में मध्यान 2:30 का ही कुछ, हर उत्सव हर सत्संग वैसे ही जमता है। जय श्री कृष्ण। तो अभी 2:25 हुए हैं, इस समय अहमदाबाद के तमाम शमशानों में मुर्दे जलते होंगे, नहीं होंगे? खाली होगा कोई? सब खाली होंगे शमशान? कहीं ना कहीं कोई जलता होगा, तो कोई जलकर पूरा हुआ होगा, तो कोई नया आया होगा, प्रोसेस चालू ही होगा, चाहे केलिको का शमशान हो, चाहे वाड़ीलाल का हो, चाहे और जगह, कुछ न कुछ होता ही होगा। तो अभी जो शब जल रहे हैं, अथवा जलकर समाप्त हो रहे हैं, अथवा जलने को पड़े हैं लाइन में, उनको कल 2:25 पर यह पता नहीं होगा कि आज की हमारी हालत होगी। गई काले 2:30 इमने खबर हशे कि अमे अर्थीमा बंधाई अने शमशान यात्रा करीशु ने हड़गावामा आवशे अमारा बॉडी, इमने खबर हशे? अभी जो मुर्दे जलने की लाइन में पड़े हैं, अथवा जल रहे हैं या जल के समाप्त हो रहे हैं, क्या कल 2:30 उनको पता था? एकदम साफ विचार। अच्छा, तो आज जो घूम रहे कोई गाड़ी में, कोई मोटर में, कोई बेंच में, कोई प्लानिंग में, कोई कुछ, और कल उनका भी होगा कि नहीं होगा? जो कल इस समय वहां आने वाले हैं उनको आज पता है क्या? जय राम जी की। और फिर भी कैसा, हाहा, देखते हैं कि शरीर का कोई भरोसा नहीं। गाड़ी उठने का तो टाइम होता है, हवाई जहाज चलने का तो टाइम होता है, बस चलने का टाइम होता है, प्लेटफॉर्म होता है, स्टैंड होता है, लेकिन इस देह का कोई स्टैंड नहीं, कोई प्लेटफॉर्म नहीं, कोई टाइम नहीं, कब कहां से चल दे कोई पता नहीं। सूरत में एक सज्जन अपने साधक के पास आए कि बोले, मेरे को पहचानते हो? अरे हाँ, तो फलाना मल है कि हाँ। अरे यार लो, ये कंकोत्री मेरी बेटी की शादी है, कंकोत्री दे दी है। दूसरों को कंकोत्री दे रहा कि मेरी बेटी की शादी पे आना आना, बाकी की कंकोत्री लिख रहा था। कईयों को बुलाया कि आना आना आना, मेरे घर आना, मेरे घर आना। वे बुलावे की कंकोत्री देते देते, कंकोत्री पर नाम लिखते लिखते ऐसा चला गया कि फिर वहीं रहा, कंकोत्री लगता लगता। दूसरों को तो दावत दे रहा है कि आना आना, और खुद लिखते लिखते राम बोलो भाई राम हो गया, कंकोत्री पर नाम लिखते लिखते चल दिया। ये आश्चर्य। अरे भैया, ऐसे भी कई हो गए हो। फिर भी ऐसी घटना देखकर दूसरे लोग यहीं अपने पैर पक्का करना चाहते हैं, यहाँ जमाना चाहते हैं, इससे बड़ा आश्चर्य क्या हो सकता है। श्री राम, यक्ष ने जब ये ब्रह्म विद्या संबंधी विचार सुने, यक्ष के कलमश दूर हो गए, उसके पाप दूर हो गए, आत्मज्ञान सुनने से उसकी अविद्या दूर हुई, कुछ उसके जो श्राप थे वो निवृत्त हुए और आकाश से विमान आए, महाभारत की कथा है। यक्ष की सदगति हुई, युधिष्ठिर महाराज को कहा कि यहाँ अढ़ड़क धन पड़ा है, कई जन्मों में धन में लोभ था, धन कमा कमा कर संग्रह करने की आदत थी, तो जो गड़ा हुआ धन है वहीं मेरी आत्मा आई, लेकिन गड़े हुए धन से भी मुझे लाभ नहीं हुआ, तुम्हारे हृदय में छुपा हुआ ज्ञान जब मेरे कानों तक हुआ आया तब मेरे को लाभ हुआ, और उसलिए मैं ये धन आपके चरणों में अर्पित कर रही हूँ। हम सोचते कि रुपए बढ़ाने से, धन बढ़ाने से, सत्ता बढ़ाने से, मकान बढ़ाने से लाभ होता है, ये बिल्कुल हमारी अदक्षता है। अपनी आत्मकार वृत्ति बढ़ाने से ही लाभ होता है, दूसरा लाभ का कोई सचोट रास्ता नहीं है।